ओम शांति। मधुबन की पावन भूमि कैसी लग रही है सबको? शायद बहुतों को पहली बार रहने को मिला होगा यहाँ। सुखदाई भूमि, वरदान देने वाली भूमि। कभी बाबा इसको कहते थे ये शीश महल भी है। शीश महल होते हैं शीशों का महल, जिसमें खुद पूरे क्लियर दिखाई देते हैं, ऊपर नीचे चारों ओर। इस भूमि पर आते ही अपना दर्शन हो जाता है। समझ गए अपना दर्शन, हमारे में कमियां क्या हैं। डीप रियलाइजेशन, कमियों के साथ साथ क्या जानना चाहिए हमें, उत्तर दो। हेलो, अपनी महानताओं को, विशेषता से भी बड़ा शब्द है महानताएं, अपनी महानताओं को भी जानना चाहिए, जिसे स्वमान कहते हैं। हम कितने महान हैं, कितने पुण्य आत्माएं हैं, हम सब हैं पुण्यवान या नहीं? सबने बहुत पुण्य किए, जिन्होंने बहुत पुण्य किए उन्हें तो भगवान मिलते हैं, नहीं तो भगवान मिलना साधु महात्माएं ढूंढ रहे हैं। अभी तक ये भी पता नहीं चलता वो है कौन। मिलना तो बहुत बड़ी चीज है। हमारे पास सन्यासी आए थे पीछे, बहुत कई मेरे से मिले, मैं देखा बेचारे मंत्र जाप ही करते हैं, कोई नाम जाप करता है। योग की साधनाओं में तो जो उनका भी योग साधना, उसमें तो कोई कोई पहुंचता है, बाकी सब भक्त। भगवान ने क्या कहा सन्यास के लिए, सन्यासी को भक्ति करने का अधिकार नहीं है। भक्ति किन का विषय है? जो देवी देवता धर्म वाले हैं। सन्यासियों का दूसरा सब्जेक्ट होता है। तो सभी इस भूमि का बहुत फायदा उठाएंगे। मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा, भाई लोग थोड़े इधर हो जाओ, बहनों को जगह दे दो भाई, थोड़े इधर हो जाओ और, क्योंकि रात्रि क्लास में सेवाधारी यहां वाले भी कई आते हैं। संडे की मुरली, हम सभी को श्रेष्ठ प्रारब्ध बनानी है, संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। इससे क्या मिलेगा? दुआएं। सेवाओं में कैसा रहना है? निस्वार्थ सेवा करके, कोई भी कामना नहीं, निमित्त निर्माण निस्वार्थ। तीन शब्द थे परसों, निर्मल बोलते हैं बाबा पर निस्वार्थ बोला। निस्वार्थ स्थिति भी बहुत सुंदर स्थिति है। घरों में भी अच्छा करते चलो, रिटर्न में कुछ लेने की कामना नहीं। संबंधी भी होते हैं आप सबके, उनके लिए अच्छा करते चलो और प्रभु अर्पण, सब कुछ विश्व सेवा, सब कुछ विश्व कल्याण के लिए। ये भावनाएं हमें बहुत बढ़ानी है अपने अंदर, सब कुछ विश्व की सेवाओं के लिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, सोच लो सभी, इससे पुण्य बहुत बनता है, प्रारब्ध बनती है हमारी श्रेष्ठ। हमें प्रारब्ध का अर्थ है सीधी भाषा में श्रेष्ठ भाग्य बनाना है हमें अपना। भाग्य बनाने का मौका है, सीजन है। एक चीज मधुबन से साथ लेकर जाएंगे, हमें स्वयं को कहीं भी उलझाना नहीं है। सब चिंतन करेंगे अच्छी तरह। हर व्यक्ति उलझा रहता है कहीं ना कहीं, दुनिया में, संबंधों में, परिवारों में, और वो उलझन आजकल थोड़ी सत्य भी लगती है कि यहाँ तो उलझना ही पड़ता है, यहाँ तो हमें इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा बहुत ज्यादा, पर कर्तव्य निभाते हुए डिटैच रहना। डिटैच रहने का अर्थ बहुत गहरा होता है, समझते हैं ना अंग्रेजी का सब, उससे न्यारा, अप्रभावित। ऐसा नहीं उसका ही प्रभाव दिलो दिमाग पे सारा दिन छाया रहे, और जो चीज हमारे दिमाग पर सारा दिन छाई रहती है तो देखो क्या होता है, फिर वो अंदर सार रूप में समा जाती है, फिर दूसरी आ जाती है, फिर वो अंदर सार रूप में समा जाती है, तीसरी आ जाती है। अगर वो चीजें खराब हैं तो बार बार समा कर हमारी आंतरिक खुशी को, हमारी शांति को, हमारी अच्छी जो चीजें हैं अंदर उनको नष्ट करती रहती हैं। अगर वो अच्छी चीजें समा गई, क्या सबसे अच्छा हमारे पास रोज, बाबा की मुरली। अब किसी को वो सारी मुरली तो याद रहती नहीं, हमें भी नहीं रहती, उसका सार समा जाता है चित्त में, वो सार रोज समाते समाते अंतर को शक्तिशाली बना देता है। इसलिए मुरली पर सबको बहुत ध्यान देना है, मुरली का सुख पाना है, मुरली से रस प्राप्त करना है, मुरली से शक्ति मिलती है, एनर्जी, उसको रोज अनुभव करना है, आगे बढ़ते ही चलेंगे। मैं आपको ये पहली चीज याद दिला देता हूं जो यहां से आपको बहुत पक्की करनी है, वो है ज्ञान का बल। सभी अपने पास, भाई इनको बैठा लो, बुजुर्ग माताओं को जरा बैठा लो, बना लो जगह, तो थोड़ा खिसकेंगी बहने, जगह बन जाएगी। हाँ बैठा लो, तो देखो ज्ञान की, सुनो मेरी ओर देखो फिर से, ज्ञान की कुछ ऐसी पावरफुल बातें अपने पास रखनी है जो आपको समय पर स्थिति को श्रेष्ठ रखने में मदद करें। ऐसा समय आ गया है युग परिवर्तन का, कभी कुछ भी होगा, कभी कुछ भी, किसका कब नंबर लग जाए, अभी ये अनिश्चितता का काल तेजी से आ रहा है, इसमें हमारी स्थिति स्ट्रांग रहे, मृत्यु के समय, बहुतों की मृत्यु के समय, हमारी मृत्यु के समय रहनी अलग बात है, जो औरों की मृत्यु होती है, जो मनुष्य को हिला के जाती है, उसमें स्थिति अच्छी रहे, ज्ञान की ऐसी कुछ पावरफुल बातें अपने पास रखेंगे। मैं अभी अभी की बात सुनाऊं, किसी ने कॉन्टेक्ट किया, मेरे पास बहुत चार पांच भाई हैं, उनको कांटेक्ट करते हैं लोग, वो मेरे से बात कराते हैं, भाई जी घर में कुछ ऐसा हो गया है, चार पांच साल से लगातार मौतें हो रही हैं, मैं बच्ची हूं, मेरा एक छोटा भाई और बूढ़ी दादी, बस अब मुझे डर सताता है, ये भी चले गए तो उत्तर दो आप, कैसे ऐसे में स्थिति को अच्छा रखें, सोचो। उसको लग रहा है कि जिस तरह हमारे परिवार से लोग गए हैं, ये भी चले जाएंगे, तो बोलो। मैं माताओं के अनुभव सुनाता हूं अच्छे, एक माता के ऐसे ही दो गए, पति और बड़ा बेटा, उसने अपनी स्थिति को बहुत अच्छा रखा। मैंने पूछा क्या याद रखा था, कहा बस एक ही संकल्प रहा, इन आत्माओं का मेरे साथ इतना ही पाठ था, कहीं और जगह पाठ बजाने चले गए, मैं अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ूं, क्योंकि स्थिति को बिगाड़ने से वो वापिस तो नहीं आ सकते, जो चीज असंभव है उसके पीछे परेशान होने से क्या फायदा, आगे की सुध लो, हिंदी में कहते हैं ना ऐसे, अब आगे का विचार करो, आगे हमारा जीवन कैसे सुंदर बना रहे। तो ज्ञान की कम से कम 16 पावरफुल पॉइंट्स सबको अपने पास रखनी है। मुरली में आ रहा था एक दो दिन पहले, सब कुछ कल्याणकारी है। जो आज बीता वो 5000 साल के बाद ही आएगा। मान लो आज कुछ खराब हो गया हमारे साथ, अब वो तो पूरा हुआ, अब उसको आने में कितना साल लगेंगे, अब उसे भूल जाएं। कल्याणकारी इसलिए भी होता है, फिर से मेरी ओर देखो माताओं, इधर 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 माताएं, जल्दी दरवाजा बंद कर लो भैया, अब कोई देखे नहीं। कल्याणकारी इसलिए भी होता है कि कुछ बातों से हमारे कर्मों के हिसाब किताब चुकते होते हैं। जैसे बीमारियों के लिए बाबा ने कहा, एक बहुत अच्छा विचार है, देखो ये विचार हमें, अगर हम इन्हें धारण कर लें तो सुख देंगे, बीमारियां आ रही हैं, ये संकल्प करो विदाई ले रही हैं। एक छोटी सी लाइन आत्मा को सुखी कर देती है, विदाई ले रही है। क्यों आ रही है? जब से ज्ञान में आए ज्यादा बीमार रहने लगे हम, पहले ही अच्छे थे। छोड़ो ज्ञान ध्यान, छोड़ने से कुछ होगा? कई लोग इतने कच्चे होते हैं, सोचते हैं बाबा का बनने के बाद ही समस्याएं आई हैं, छोड़ो, उन्हें पता ही नहीं बाबा कौन है, पता ही नहीं उन्हें, ज्ञान ही नहीं होता। उसे छोड़ने लगते हैं जिसे पाने के लिए न जाने क्या क्या करते आए थे। पाना तो छोड़ो, कहते थे तुम्हें एक बार देख लें बस, तृप्त हो जाए, हमारी भक्ति पूर्ण हो जाए, हमारी जीवन सफल हो जाए, उसे फटाफट छोड़ देते हैं। और उसे छोड़ के फिर क्या नुकसान होता है? आप में से किसी को छोड़ने का संकल्प आए कभी तो याद रखना, परमात्मा मदद से वंचित हो जाएंगे। परिस्थितियां तो जो आएंगी वो आएंगी, उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा, लेकिन अगर हम बाबा से जुड़े हैं तो समय पर बाबा हमें बहुत मदद करेंगे, बहुत ध्यान देंगे। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, ख्याल में उतार लिए बात, 16 पॉइंट्स लिखनी अच्छी अच्छी, साक्षी भाव की, ड्रामा के ज्ञान की, बाबा की मदद की, जो हमारी स्थिति को अचल अडोल कर दे। समय पर कोई बड़ी से बड़ी चीज भी आ जाए, हम जल्दी अपने को संभाल पाए, ऐसी ज्ञान की बातें। और कुछ दिन उन्हें रोज पढ़ लेना, 2 मिनट लगेंगे 16 पॉइंट पढ़ने में, ताकि वो हमारी मेमोरी में, हमारी स्मृतियों में दृढ़ता से समाई रहे और समय पर हमें याद आ जाए। मैं एक बात कुछ दिनों से यहाँ क्लास में सुना रहा हूं, आपको भी सुना देता हूं, कैसे अपने को निश्चिंत रखना है। बाबा ने कहा कि जिन्होंने बाबा के कार्यों में सहयोग दिया है, प्रकृति विनाश काल में उनको मदद करेगी। थोड़ा भी सहयोग दिया, और आप सबने कितना दिया, बोलो उत्तर, कहो ना, डर रहे हैं, बहुत ज्यादा दिया है। बाबा के साथी बन गए ना आप सब, आज भी था मुरली में, भगवान के कार्यों में हम सहयोग कर रहे हैं। कोई सुने तो सोचेगा क्या बोल रहे हैं, उल्टा तो नहीं बोल दिया, भगवान हमारे कार्यों में मदद करता है, इधर हम भगवान के कार्यों में मदद कर रहे हैं, है ना नशे की बात। तो प्रकृति हमें बहुत मदद करेगी, याद रखेंगे। जो रहस्य मैं सुना रहा हूं, और कई बार इसलिए सुनाता हूं कि सब तक पहुंच जाए, क्योंकि हर क्लास सब तो नहीं सुनेंगे। वैज्ञानिकों को एक काम दिया गया था, रिसर्च का वो काम था कि जब प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, दो तरह के विशेष, चाहे भूकंप चाहे बरसात आदि, जो इस साल बहुत हुई हैं, विनाशकारी हुई हैं कई जगह। आप लोग कहाँ से हैं? भट्टी वाले दिल्ली की तरफ से है ना? हाँ, भोपाल जोन से भी है। तो भोपाल का तो मुझे पता नहीं, पर दिल्ली में भी और गुजरात में बहुत ज्यादा और राजस्थान में बहुत ज्यादा और हिमालय का तो सब सुनते ही होंगे, बादल फटे, बहुत नुकसान किया। तो वैज्ञानिकों को काम दिया गया कि इस पर रिसर्च करो कि जब ये सब होता है तो जो ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और तीर्थ होते हैं ये सुरक्षित रहते हैं क्यों। सुनेंगे और आप सब इसका प्रयोग करेंगे, फायदा उठाएंगे। वैज्ञानिकों ने जो निष्कर्ष दिया वो ये था कि इन पवित्र स्थानों से पवित्र तरंगे चारों ओर फैलती हैं। देखो, मंदिर भी हो, है तो मूर्ति वहां, लेकिन हर व्यक्ति एक अच्छी भावना से वहां जाता है ना, तो पवित्र वाइब्रेशंस वहां से फैलते ही रहते हैं। तो कहा ये पवित्र तरंगे विनाश की तरंगों को रोक देती हैं, वापिस भी कर देंगी। हम सब पवित्र आत्माएं जहां होंगी सब अपने से बात करें, जिनके पास जितनी अच्छी पवित्रता है वो जहां होंगी उनके वाइब्रेशंस क्या करेंगे, विनाश की तरंगों को रोक देंगे। ये चमत्कारी का अनुभव विनाश काल में बहुत ज्यादा होते रहेंगे। पवित्रता का पहला स्टेप ब्रह्मचर्य, प्योरिटी, पावन होना, होली होना। सबसे ऊंची स्थिति है निर्विकारी होना, मन में कोई कुछ भी गंदगी न रहे, किसी के प्रति वैर भाव भी नहीं। बहुत ऊंची स्थिति है निर्विकारी। ये स्थिति केवल देवताओं की गायन में आई है। वहां न किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष है, न वैर भाव है, कोई निगेटिविटी है ही नहीं किसी के लिए, कोई किसी का बुरा सोचता ही नहीं। प्योरिटी की शक्ति तब कमजोर पड़ जाती है जब मनुष्य के संकल्प व्यर्थ में बहुत नष्ट होते हैं, उसकी एनर्जी नष्ट होती है, व्यर्थ से हमारी आंतरिक शक्तियां नष्ट होती हैं। कोई कितना पवित्र हो लेकिन अगर वो व्यर्थ में है, मान लो विकारों की बात छोड़ो, परिवारों में कोई उलझन आ गई, आपके पास पवित्रता बहुत अच्छी है लेकिन उस उलझन में आप रात दिन परेशान रहने लगे, संकल्प बहुत चलने लगे, तो प्योरिटी की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाएगी, वो काम ही नहीं करेगी। इस चीज पे सभी बहुत ध्यान देंगे तो हम सभी को इस विनाश काल में, परिवर्तन के काल में, एक नया स्वमान आपके सामने, मास्टर विश्व रक्षक बनना है। इस स्वमान को भी सब बढ़ाएंगे, मैं हूं मास्टर विश्व रक्षक। ये अनुभव होंगे विनाश काल में, बाबा के बच्चों को वंडरफुल अनुभव होंगे बाबा के चमत्कारों का। अभी तो बहुत सुंदर सीन रहा हुआ है संगम का, कौन सा बताओ? साक्षात्कारों का, जिसमें बाबा अपने बच्चों को मगन रखेगा, सारा संसार भागेगा। इस मधुवन में जो आपको एक चांस मिला है आगे मिलने वाला नहीं है, इसलिए बहुत भाग्यवान है आप सभी। बाबा ने कह दिया है जमीन पर लोग सोएंगे, पहाड़ों पर सोएंगे, आकाश उनकी चादर होगी, धरती बिछोना होगा और जो अटैची लाए वो तकिया होगा। खेल दूसरा चलेगा अब, क्योंकि करोड़ों करोड़ों आत्माएं, देवकुल की कितनी आत्माएं हैं? 33 करोड़। 33 करोड़ में आप सोचो 2 करोड़ सतयुग की आबादी, सतयुग के अंत तक, 10 करोड़ त्रेता के आधे तक, इतनी आत्माएं एक तो ब्रह्मा भोजन खा के जाएंगी, यहां पांडव वन में भी आके जाएंगी। आएंगी या नहीं आएंगी? बिना ब्रह्मा भोजन खाए तो उनकी गति होगी नहीं, उन्हें देवत्व को प्राप्त होना है, चारों धाम की यात्रा तो सभी करेंगे, इस पवित्र स्थान से तो बहुत कुछ लेकर जाएंगे सब। तो सेवाएं तो बहुत होने वाली हैं, साक्षात्कार की धूम चलेगी इस धरा पर। जो चित्र बाबा ने प्रस्तुत किए हैं अंत के, उन पे ध्यान दिया करो मुरलियों में, और अगर किसी के पास हो 6970 के बाबा के संदेश किताबों में है, वो आ गई किताबें, वो बहुत सुंदर हैं, वो बहुत बड़ी प्रेरणा है। वो एक दो याद आ गए मुझे, सुना देता हूं। हर एक के मस्तक में चमकती हुई आत्मा ऐसी दिखाई देगी सबको, सब कहेंगे सबके अंदर परमात्मा ही है। सर्वव्यापकता का सिद्धांत भी यहीं से बन जाएगा। है आत्मा, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान तो क्लियर नहीं होगा, सबके अंदर भगवान बैठा है, देखो चमक रहा है मस्तक में। ऐसी बहुत सारी बातें जिस इस देवी के जो जो भगत हैं वो उससे मिलेंगे, जिस इस देवी की जिसने जन्म जन्म आराधनाएं की हैं, मिलने की अभिलाषा की है, उनकी ये श्रेष्ठ कामना पूर्ण हो जाएगी। और जैसे हम भगवान से मिलकर तृप्त हुए, वो अपने इस देव देवियों से मिलकर तृप्त होंगे। तो एक बड़ा खेल इस सृष्टि पर चलने वाला है, भारत के अलग अलग क्षेत्रों से। आज यहां से किसी का साक्षात्कार हुआ, आज इधर से, आज उधर से, आज वहां से, धूम मचेगी। तब क्या होगा, हम सबको, अब मैं कहूंगा आप सबको, अपने श्रेष्ठ भाग्य पर गर्व होगा। वाह, हम तो मधुबन में जाके रहे थे, 3 दिन रहे, 4-5 दिन खाया पिया सोए, वहीं बाबा के तीर्थ किए रोज, होगा या नहीं। तो बाबा क्या करते हैं, तुम अभी अपने भाग्य को नहीं जानते, जब संसार तुम्हारे भाग्य का गुणगान करेगा तब तुम्हें पता चलेगा भारे मैं, गीत निकलेगा अंदर से। इसलिए ज्ञान की बातों को पक्का करें ताकि मन कहीं विचलित ना हो। ड्रामा का ज्ञान बहुत गहरा है, जिसके लिए बाबा मुरलियों में कहते हैं सृष्टि की आदि मध्य अंत का ज्ञान न किसी ग्रंथ में लिखा हुआ। चलो आत्मा और परमात्मा की थोड़ी थोड़ी चर्चाएं हैं भी, लेकिन सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान किसी को पता ही नहीं, वो कल्पनाओं में भी नहीं है कि हम सब देवता थे, हम कितने महान थे, और ये भारत क्या था संसार में सबसे महान। एक बार अखबार में एक चीज छपी, अकबर का जब राज था, लगभग 500 साल हो गए, भारत की धन संपदा इतनी ज्यादा थी कि सारे संसार की धन संपदा को जोड़ो तो भारत जितनी होगी। अब अमेरिका का आगे नाम है धन में, बहुत बड़ी इकोनॉमी है उनकी, अब धीरे धीरे किसका होगा, अब भारत ऊपर पहुंच जाएगा। और भारत के कौन कहो, हम सब। भारत कोई मिट्टी और दुकान और मकान और बिल्डिंग से थोड़ा ही बनता है, भारतवासी जितने महान उतना देश महान। और भारत में भारत क्यों महान बनेगा, बाबा ने इसके उत्तर दिए हैं। एक तो स्वयं भगवान यहां आए, लेकिन उसने कितनी पवित्र आत्माएं बना दी। कलयुग की दलदल में फंसे हुए मनुष्यों को बाहर निकाल कर पवित्र बना दिया। तो जहां बहुत पवित्र आत्माएं हो, विजय उसी की होगी, आगे वही बढ़ेगा। चाहे दुनिया कुछ भी कर ले, कोई कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब इस पर भगवान की नजर है। मैं कहा करता हूं, जब संसार को पता लगेगा कि ब्रह्मा कुमारियों में 50,000 तो पवित्र कन्याएं हैं, बाल ब्रह्मचारिणी क्या होगा? सारे संसार में भी इतनी नहीं है, पूरे कलयुग में मिला लो कई जन्मों में। तो इतनी बड़ी शक्ति हमारे पास है, इसलिए न कहीं डरना है न घबराना है। पवित्रता के बल से बहुत सेफ्टी रहेगी, बहुत सुरक्षा रहेगी, चिंता कुछ नहीं, ड्रामा पे अचल अडोल हो जाएं सभी, क्योंकि सबको जाना है। रहेंगे, मुक्ति का समय आ गया। और मुक्ति कितनी बड़ी चीज है, सन्यासी महात्माएं घर छोड़ के मुक्ति के लिए अब तो कम, पर पहले तो जंगलों में ही रहते थे, खान पान भी छोड़ देते, जो वहां है एक टाइम खाया और मस्त रहे अपनी समाधियों में मुक्ति के लिए। और अब समय आ गया है, सबको मुक्ति का वरदान मिल रहा है, मिल जाएगा, सभी आत्माएं मुक्त होंगी। तो हमें अब इस पे ध्यान देना है कि संतुष्ट रहकर, संतुष्ट करते हुए दुआओं से अपने भंडारे भरपूर करने हैं। हमें प्राप्त दुआएं और हमारे द्वारा किए गए पुण्य कर्म हमारे सबसे सुंदर मित्र होते हैं। जब धन काम नहीं आता, जब अपने काम नहीं आते, आप कहेंगे अपने तो काम आते ही हैं, आते हैं क्या? बहुत गड़बड़ हो रही है आजकल, तो सबसे गड़बड़ अपनों से हो रही है। संबंधों में कड़वाहट मनुष्यों का सुख छीनती जा रही है। धन भी बहुत होता है और कुछ भी बहुत बहुत होता है, पद पोजीशन होते हैं, पर संबंधों की कड़वाहट, पति पत्नी का नहीं बन रहा है, बच्चों से नहीं बन रही, बच्चे अनकंट्रोल्ड हो गए हैं, कहीं भी जा रहे हैं। अपने को बदलना है, अपने को संतुष्ट आत्मा बनाना है। हमारी संतुष्टता क्या करेगी? संतुष्टता में बहुत शक्तियां हैं। बाबा की एक मुरली है बहुत अच्छी, जो संतुष्ट आत्मा है वो बाबा को बहुत प्रिय है। जहां संतुष्टता है वहां सर्व शक्तियां खींची चली आती है। बहुत सुंदर ये बात है, हमें संतुष्ट रहना है और करना है। दूसरों को भी वही कर सकेंगे जो खुद संतुष्ट होंगे। परिवारों की बात कर रहे हैं आप, अपने घर में अपने बच्चों को अच्छे बोल बोल कर भी संतुष्ट कर सकते हैं। आपके बोल में थोड़ी ताकत होनी चाहिए, अलौकिक शक्ति, ताकि आपके बोल का प्रभाव आपके बच्चों पर तुरंत पड़े। होगा या नहीं? वाणी में बोल किस आधार पे आता है? मूल्यों से। वो चीज सबके पास है, बस बढ़ानी है। वाणी में बोल आता है, आपने सुना है, मैं याद दिला देता हूं। तुम किसी को भी कोर्स कराते हो, इस स्मृति से कराओ, मैं आत्मा और सामने वाली भी आत्मा, तुम्हारे बोल में प्रभाव रहेगा। इसे और जोड़ दिया व्यक्त बाबा ने, मैं आत्मा लेकिन कौन सी आत्मा, स्वमान जोड़ दिया। कोर्स करने को आया है, आपको कोर्स कराना है, आप आधा मिनट अपने को इस स्थिति में ले आओ, मैं इन आने वालों की इस देवी हूं, मैं इस सृष्टि की मान आत्मा हूं, मैं शिव शक्ति हूं। फिर ज्ञान दो, आपके बोल में बहुत ज्यादा प्रभाव होगा। होगा या नहीं? बहुत होगा। बच्चों पर भी यही प्रयोग करेंगे आप। सारा दिन जितना अच्छा स्वमान का और आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करेंगे, आपके बोल में बहुत पावर रहेगी। आपको ज्यादा नहीं कहना पड़ेगा, बच्चों को एक बार कुछ कहा वो सम्मान सहित आपकी बात स्वीकार करेंगे। क्योंकि माताओं को ज्यादा कष्ट इसी बात में होता है जब बच्चे उनकी सुनते नहीं हैं। और ये तो निश्चित है, आप उन्हें अच्छी बात कहेंगे और उन्हें सुनना चाहिए, इसमें उनका भला होगा, लेकिन वो सुनते नहीं है, वो किसी और की सुनते हैं। बड़े हो गए और सोचते हैं माँ बिना पढ़ी लिखी क्या बोलती रहती है, इसको क्या पता। उन्हें पता नहीं कि पढ़ो लिखो से ज्यादा बोलेंगे आगे की सब। बुद्धिमान और समझदार कई बिना पढ़े लिखे होते हैं, हमने देखे हैं। पढ़े लिखे भी जिनसे राय लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई में क्या है, बच्चों को पढ़ाया गया, उन्होंने रट लिया, एग्जाम में लिख दिया, सर्टिफिकेट मिल गया, डिग्री मिल गई, बस इससे ज्यादा बहुतों को नहीं आता है। लेकिन समझदारी और बुद्धिमानी, विवेकशीलता, वो अलग चीज होती है। वो किसी गांव की बुजुर्ग माता में भी हो सकती है जो पढ़ी लिखी नहीं है। इसलिए स्वमान का अभ्यास बढ़ाएंगे। दूसरों को संतुष्ट करने के लिए क्या चाहिए, हमारे पास परख शक्ति भी चाहिए। इनको क्या चाहिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, सच्चे उदाहरण, प्रैक्टिकल। बच्चा चाहता है मैं म्यूजिशियन बनूं, समझते हैं ना म्यूजिशियन, संगीत, संगीतकार। माँ बाप चाहते हैं हमें इसको डॉक्टर बनाना है, उसकी इच्छा नहीं है डॉक्टर बनने की, वो चाहता है मैं फर्स्ट क्लास संगीतकार बनूं, फिर गीत गाना भी सीखूं, मैं संगीत के प्रोग्राम करूं। अब यहां संघर्ष हो जाता है, आपका सोचना भी ठीक है, लेकिन सोचो आगे क्या करना चाहिए माताओं को। भाई लोग तो थोड़े निश्चिंत रहते हैं कि जो इसकी इच्छा हो करने दो। माताएं ज्यादा सोचती, हाय हमें तो अपने बेटे को डॉक्टर बनाना था, ये क्या करने लगा, गिटार बजाने लगा, बस हारमोनियम बजाएगा ये। उनकी वास्तविक जो इच्छा है वो आंतरिक संस्कारों के कारण होती है, वही करने दो उन्हें। कई बच्चे आए मेरे पास, माँ बाप लाए, हमारा लड़का क्रिकेट खेलना चाहता है, हमारी इच्छा है नहीं ये इंजीनियर बने, क्या करें। मुझे कह रहा जो आप कहोगे वही करेंगे। मैंने लड़के से बात की, वो भी पास बैठा, मैं क्या इरादा है, क्रिकेटियर बनना है, इंजीनियर मुझे कोई रुचि नहीं। मैंने उन्हें कहा आपने इसको इंजीनियरिंग में भेज दिया, ये ब्रेन पर बहुत बड़ा दबाव फील करेगा, क्योंकि उसमें इसकी रुचि नहीं है तो इसका ब्रेन उन चीजों को आराम से ग्रहण नहीं करेगा, अरुचि पूर्वक ये करेगा कोर्स, इसलिए इसको क्रिकेट फील्ड में ही जाने दो। आजकल क्रिकेटियर तो सबसे बड़े वीआईपी हैं, हम भी यहां बुलाएं तो आते नहीं, नखरे दिखाते हैं, भगवान को भी इग्नोर कर देते हैं, वो बड़े वीआईपी हैं आजकल। इसलिए संतुष्ट करने के लिए हमें कुछ याद रखना पड़ेगा। उसमें एक बात ये भी है, इस संसार में सबका भाग्य अपना अपना है, है या नहीं, कोई कुछ करेगा कोई कुछ बनेगा। सभी डॉक्टर बन जाएं तो पेशेंट क्या करेंगे बेचारे, बनेंगे क्या सभी डॉक्टर। जैसे लोग कहा करते हैं तुम पवित्रता की बात करते हो, सभी पवित्र बन जाएं तो दुनिया कैसे चलेगी। हम सीधा कहते हैं भला सभी कोई डॉक्टर बना करते हैं क्या, सभी पवित्र बनेंगे क्या, ये तो जो पवित्र आत्माएं हैं देव कुल की वो आ जाएंगे, बाकी सब वहीं रहेंगे। आप कितना भी ढिंढोरा पीटो वो नहीं सुनेंगे, उनके कानों में नहीं जाएगा। और जो देव कुल की आत्माएं हैं सुनते ही फटाफट खींचे चले जाएंगे। कई बाबा के बच्चे लाल लाइट को देख कर आ गए, लाल लाइट ने उन्हें आकर्षित किया, आपको खुशी होगी, कई आत्माएं बहनों की सफेद साड़ी से आकर्षित होके ज्ञान में आ गए। भाई कुछ है, आकर्षण है, देवियां हैं ये तो। कुछ लोग झंडे को देखकर ज्ञान में आ गए। तो जिनका पार्ट है वो तो कोई भी कारण बन जाएगा छोटा मोटा और वो भागे चले आएंगे। संतोष करने के लिए परखना, दूसरों को भी समझना, चाहे वो आपके बच्चे हो या कोई और हो, उन्हें समझना, उन्हें सहयोग देना, उसी फील्ड में उन्हें आगे बढ़ाना, इससे सब आत्माएं संतुष्ट होंगी। और जिस घर में संतुष्टता के वाइब्रेशंस हैं, कैसा है वो घर? सब संतुष्ट है। संतुष्ट हैं तो सब प्रसन्न होंगे, प्रसन्न होंगे तो बहुत सुखी अपने को अनुभव करेंगे, स्वर्ग हो गया ना घर। तो सभी को, भाई बहनों को, सभी को, माताएं बहुत बैठी हैं, अपने अपने घरों में खुशी का, प्यार का माहौल बनाना है, ताकि सब उस माहौल में संतुष्ट आत्माएं बन जाएं। ठीक है, पसंद है, हमें दुआएं मिलेंगी, और दुआएं बहुत बड़ी चीज होती हैं। मैं तो एक ही शब्द बोला आपको, समय पर दुआएं ही मनुष्य को सबसे ज्यादा काम आती है। जहां धन साथ छोड़ जाए, जन साथ छोड़ जाए, दुआएं ऑटोमेटिकली काम करते हैं। बद दुआएं बाधाएं पैदा कराती हैं। देखो अभी वो शायद वो आ रहे हैं ना, पितर पितरों का करते हैं ना, हाँ, तो ये लोग सब पंडित बताते हैं ना आपको, पितर दोष है, ये है, वो है, उसको ठीक करो, गया जाओ, फलन जगह जाओ, मुझे तो पता नहीं कौन कौन से तीर्थ हैं पितर दोष को ठीक करने के लिए। ये क्या है? कई लोग हंसा करते हैं कि जब वो थे तब तो तुम उन्हें खाना भी नहीं देते थे, अभी भोग खिला रहे हो। देखो देखो, हमारे पूर्वज माँ बाप तो है, उनके माँ बाप, उनके माँ बाप, उनके माँ बाप, हजारों साल से हमारी ये चेन चली आ रही है ना। अब मान लो हमने किसी जन्म में उनको कष्ट दिया था, चार लोग मान लो आप, हमने उनको चार लोगों को कष्ट दिया था, व्यवहार से, बोल से, वो बुजुर्ग हो गए थे, उनकी सेवा नहीं की थी, उनके घर से निकाल दिया था, आजकल करते हैं सब काम, तो उनकी बद्दुआएं अब तक भी हमारा पीछा कर रही हैं। इसको कहते हैं पितृदोष। चार का तो मैंने उदाहरण दिया, हजार हो सकते हैं। उन्हें संतुष्ट करो, ये पूजा कराओ, वो कराओ, वो कराओ, हम क्या करेंगे? क्षमा याचना, और उन सब को थोड़ा थोड़ा भी योगदान, क्योंकि वो सभी आत्माएं अब यहीं तो हैं, वो 1000 साल पहले तक की आत्माएं सब हमारे आसपास ही होंगी। कोई हमारा बहुत अच्छा मित्र होगा, किसी की दूसरी होगी प्रवृत्ति, किसी के संस्कार मिलते होंगे, कोई हमें बहुत प्यार करेगा, कोई घृणा करेगा, घृणा वो करेंगे जो जिनों को हमने कष्ट दिया था, ऑटोमेटिक प्यार वो करेंगे जिनको हमने मदद की थी। आप देख सकते हैं कई लोग बिना मतलब ही हमें मदद करते हैं, प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं। तो क्षमा याचना, क्षमादान और शुक्रिया, मधुबन में तीन चीजें आप सब करेंगे। जिनको हमने कष्ट दिया हो, हम उनसे क्षमा चाहते हैं। थोड़ी देर का काम है, इसमें घंटों की बात नहीं, आधा मिनट। जिन्होंने हमें जन्म जन्म मदद की हो, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे चारों ओर ही है, वो फिर मदद करने आ जाएंगे। ऐसे करेंगे, दुआएं देंगे, किसी ने हमें कष्ट पहुंचाया हो उसको क्षमादान, तो हमारा मन सुखी हो जाएगा। जो बद्दुआओं की एनर्जी आ रही थी ना, इसको बैड एनर्जी कहेंगे इंग्लिश में, वो कट जाएगी, कट ऑफ होगी, और शुद्ध वाइब्रेशंस चारों ओर से हमारे पास आने लगेंगे। हम बहुत चीजें सुनते हैं मेरे पास, क्योंकि सब समस्याएं लेकर आते हैं, किसी की किसी से बन नहीं रही, कारण कुछ भी नहीं। ऐसे बहुत केस आते हैं, दो की आपस में बन नहीं रही है, कारण कुछ नहीं। क्या कारण होता है? बिना कारण के तो कुछ होता नहीं। कारण है पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब। इसलिए इन छोटी छोटी विधियों से हमें उन बद्दुआओं के आते हुए प्रवाह को रोक देना है। आपको अनुभव होगा, तबीयत ठीक होने लगी, परिवार में प्यार बढ़ने लगा, सहज सफलता होने लगी। भाई लोग ध्यान दें, कार्यों में, जॉब में, बिजनेस में सहज सफलता होने लगी तो बहुत अच्छी अनुभूति होगी। कल हम आपके पास आएंगे सवेरे 10:15 क्लास के लिए, अभी तो रात्रि क्लास होती है घरेलू, तो जग गए ना सभी यहाँ पे, अब सवेरे और जग जाना और अच्छे अच्छे संकल्प करना। ओम शांति।